भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
भगवत्युत्तमश्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिके ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंध 22वां अध्याय चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट श्लोक संख्या 55। गोपीथाय जगत्सृष्टेः काले स्वे अच्युत आत्मकः मनः वाक् वृत्तिभिः सौम्यैः गुणैः संरञ्जयन् प्रजाः गोपीथाय जगत्सृष्टेः काले स्वे स्वे च्युतात्मकः मनोवाग्वृत्तिभिः सौम्यैः गुणैः संरञ्जयन् प्रजाः गोपीथाय जगत्सृष्टेः काले स्वे स्वे च्युतात्मकः मनोवाग्वृत्तिभिः सौम्यैः गुणैः संरञ्जयन् प्रजाः गोपीथाय जगत्सृष्टेः काले स्वे स्वे च्युतात्मकः मनोवाग्वृत्तिभिः सौम्यैः गुणैः संरञ्जयन् प्रजाः
गोपीथाय जगत्सृष्टे काले स्वे स्वे च्युतात्मकः मनोवाग्वृत्तिभिः सौम्यै गुणैः संरञ्जयन् प्रजाः गोपीथाय जगत्सृष्टे
काले स्वे स्वे च्युतात्मकः
मनोवाग्वृत्तिभिः सौम्यै
गुणैः संरञ्जयन् प्रजाः
गोपीथाय जगत्सृष्टे काले स्वे स्वे च्युतात्मकः
मनोवाग्वृत्तिभिः सौम्यै
गुणैः संरञ्जयन् प्रजाः
गोपीथाय
सुरक्षा के लिए
जगत्सृष्टेः
परमसृष्टा का
सृष्टा का
काले
यथा समय
स्वे स्वे
अपने अपने
अच्युत आत्मकः
कृष्ण भक्त होने से
मन
वाक्
शब्द
वृत्तिभिः व्यवसाय से
सौम्य
अत्यंत सौम्य
भद्र
गुणैः गुण से
संरंजयन
प्रसन्न रखते हुए प्रजा नागरिक जन
नागरिक जन। अनुवाद और तात्पर्य अभय नारायण भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। चूंकि महाराज पृथु भगवान के पूर्ण भक्त थे, अतः वे सारे नागरिकों को उनकी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रसन्न रखते हुए भगवान की सृष्टि की रक्षा करना चाहते थे। अतः पृथु महाराज उन्हें अपनी वाणी, मन, कर्म तथा सौम्य आचरण से सभी प्रकार प्रसन्न रखते थे। तात्पर्य, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, पृथु महाराज दूसरों के मन की बातों को समझ सकने की अलौकिक शक्ति के कारण सभी प्रकार के नागरिकों को प्रसन्न रखते थे। निसंदेह वे इतने व्यवहार कुशल थे कि प्रत्येक नागरिक संतोष और पूर्ण शांति का अनुभव करता था। इस श्लोक में अच्युतात्मक शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराज पृथु इस लोक में भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। उन्हें पता था कि वे भगवान के प्रतिनिधि हैं और भगवान की सृष्टि की रक्षा ठीक से होनी चाहिए। सृष्टि के पीछे क्या उद्देश्य है, इसे नास्तिक नहीं समझ सकते। यद्यपि आत्म जगत की तुलना में यह भौतिक जगत हेय है, तो भी इससे इसके पीछे कुछ न कुछ प्रयोजन है। आधुनिक विज्ञानी तथा दार्शनिक इस प्रयोजन को नहीं समझ सकते, न ही वे सृष्टा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। वे प्रत्येक बात को वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वे किसी भी वस्तु को परम सृष्टा में केंद्रित नहीं करते। कोई भक्त ही सृष्टि के प्रयोजन को समझ सकता है। यह प्रयोजन है उन व्यष्टि जीवात्माओं को सुविधाएं प्रदान करना जो भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताना चाहती है। अतः इस लोक के शासक को यह जानना चाहिए कि सभी निवासी, विशेष रूप से मनुष्य, इस भौतिक जगत में इंद्रिय सुख भोगने के लिए आए हैं। अतः शासक का कर्तव्य है कि वह उनके इंद्रिय भोग को तुष्ट करे और साथ ही उन्हें कृष्ण चेतना तक उठा दे, जिससे वे अंत में भगवान के धाम वापस जा सके। राजा या शासनाध्यक्ष को इस विचार को ध्यान में रखते हुए संसार में राज्य करना चाहिए, इससे हर व्यक्ति संतुष्ट रहेगा। किंतु यह कैसे किया जाए, महाराज पृथु के समान अनेक उदाहरण है और इस लोक में उनके शासन का इतिहास श्रीमद्भागवत में विस्तार से वर्णित है। इस पतित युग में भी यदि शासक, अधीक्षक तथा राष्ट्रपति पृथु महाराज के उदाहरण से लाभ उठाए तो सारे संसार में निश्चय ही शांति तथा संपन्नता का साम्राज्य स्थापित हो सकता है।
वृंदावन में है नगर से
आज उनका घर का जो सीमाचल नया जो बना है उसमें उन्होंने फ्लैट लिया है, तो आज घर का वास्तु हो जाएगा।
आज इधर होना इष्ट गोष्ठी करना है ना आज, तो चलिए ठीक है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादीशतायिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज थोड़ी देर के लिए क्लास करेंगे और उसके बाद फिर थोड़ी इष्ट गोष्ठी करेंगे, ठीक है। और आज हमारे बीच कारवार से खास आप सबका संग लेने के लिए गोविंद दत्त प्रभु आए। तो सोच रहे थे इतने दिन से यात्रा के बाद में गोकुल धाम के भक्तों का संग नहीं मिला, तो आज आना ही चाहिए। तो आप सबको इधर उधर दूर दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, देखिए आप सबका संग लेने के लिए भक्त आते हैं, बराबर। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पृथ्वी महाराज व्यवहार कुशल किस प्रकार से थे, किससे कैसे व्यवहार करना, ये एक कुशलता सब में होनी चाहिए या कम से कम प्रयास करना चाहिए कि हम ये सीख लें किससे कैसे व्यवहार करना। और राजा या नेता होने का अर्थ ये भी है कि राजा को समझना चाहिए कि प्रजा के मन की बातें क्या हैं, कौन सी उनकी अपेक्षाएं हैं, उनकी इच्छाएं क्या है, उनकी मनोवृत्तियां क्या है। तो ये सब जानकर राजा को कोई उपयुक्त ऐसे मार्ग निकालना चाहिए जिसके द्वारा प्रजा के विचारों को पूर्ण किया जा सके और साथ साथ शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन भी न हो और सारी प्रजा या सारे प्रजा के सदस्य सब भगवान के ओर आगे चलते रहे। तो ये राजा को, किसी भी नेता को, भले किसी राज्य का नेता न भी हो, किसी एक आश्रम में भी कोई अधिकारी व्यक्ति हो, तो उसका कर्तव्य होता है कि वह समझ ले कि कैसे हर एक व्यक्ति की मानसिकता के अनुसार उसे वो कार्यरत करे, कार्य में लगाए और उसे संतुष्ट करे, और ताकि इस तरह से वो आगे भक्ति में बढ़ता रहे। तो पृथु महाराज शक्ति अवेश अवतार है, प्रजा पालन शक्ति इनके अंदर है। तो प्रजा का पालन करने का मतलब केवल ये नहीं है कि शारीरिक दृष्टि से उनका पालन करें, या रक्षा या पालन, ये बहुत गहरे शब्द होते हैं, इनका तात्पर्य बहुत गहरा होता है। जब ये कहा जाता है कि राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा करे, तो रक्षा का मतलब केवल शारीरिक दृष्टि से रक्षा करना नहीं है, यद्यपि ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु इतना कहना पर्याप्त नहीं है। जो प्रजा के सदस्य होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनकी इच्छाओं को उनकी इच्छाओं की पूर्ति करके हर एक प्रजा को संतुष्ट रखना, ये भी एक आवश्यक बात है। रक्षा या पालन का एक तात्पर्य ये भी है, और साथ साथ रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है कि उनकी आध्यात्मिकता या भक्ति की रक्षा करना। यदि कोई राजा सबको समृद्ध बना ले परंतु आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ना उन्हें प्रेरणा दे, ना कोई मार्गदर्शन करे, ना कोई नियम बनाए, तो फिर वो सही पालन नहीं है। उस प्रकार की सुरक्षा ज्यादा समय अधिक समय तक टिक नहीं सकती। तो पृथ्वी महाराज ने बतलाया, परीक्षित महाराज ने बतलाया, युधिष्ठिर महाराज ने बतलाया कि कैसे प्रजा की रक्षा पूर्ण रूपेण की जानी चाहिए। पूर्ण रूपेण अर्थात हर दृष्टि से रक्षा होनी चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि से, मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, हर एक व्यक्ति को कैसे संतुष्ट बनाया जाए। और पुराने काल में यदि कोई प्रजा असंतुष्ट होता तो ये दोष राजा को दिया जाता कि राजा ठीक से काम नहीं कर रहे। कोई उदाहरण इसके आप बोल सकते हैं श्रीमद् भागवत से या और किसी ग्रंथ से?
हाँ, रामायण।
हाँ, क्या हुआ रामायण में?
रामायण में एक उदाहरण है जिसमें वो राम ने जाकर उसको वध किया, बाद में जाकर वो तपस्या कर रहा था उल्टा एक शुद्ध मतलब दोष दिया था, इसलिए फिर उसको जाके ऐसा वध किया।
वो शायद उत्तरकांड की बात कर रहे हैं, जो एक व्यक्ति तपस्या कर रहा था, एक पेड़ की शाखा से उल्टा लटक रहा था और वो उसकी तपस्या थी। ऐसे रहना ज़्यादा समय के लिए संभव नहीं है ना, जैसे शीर्षासन होते हैं ना, उसको कितने वक्त शीर्षासन करते हैं? शीर्षासन कितने समय तक करते हैं?
3 मिनट, 4
3-4 मिनट। और यदि 3-4 दिन तक किया तो कैसे होगा? सर पे खड़ा होना। 3-4 महीने तक किया तो कोई ऐसे उल्टा लटक रहा हो जैसे वो होता है ना रात का उड़ने वाला उस बैट को क्या बोलते हैं? सब लोग एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ
मराठी में वटवागलो
जो भी है समझ गया। तो वैसे ही लटकता है उल्टा, वैसे पकड़ के वो लटकता है। तो मनुष्य के लिए ऐसा नहीं है लटकना उल्टा। तो फिर ऋषि राम ने ऐसे कहा जाता उनका, उसकी हत्या कर दी। तो पूछा क्यों? क्योंकि इस तरह से तपस्या वेदाध्ययन केवल योग्य व्यक्तियों को करना चाहिए इत्यादि। परंतु ठीक है, ये एक बात है, लेकिन और कि यदि राजा ठीक से कार्य ना करे, हाँ, क्योंकि ये उस समय गड़बड़ हो रहा था राज्य में, तो फिर ने सोचा कि क्या क्या कारण है इसका। तो उन्होंने ढूंढ निकाला कि एक अयोग्य व्यक्ति कोई तपस्या कर रहा है, वेदाध्ययन कर रहा है, जिसको कि करना नहीं चाहिए। इसलिए सारे प्रजा में, सारे राज्य में उत्पात हो गया था, उसको ठीक कर दिया। परंतु खास करके जब कुछ हो रहा है राजा को दोषी ठहराया जाता है, और ऐसा कोई उदाहरण बताइए। हाँ, तो भाई
ब्राह्मण का
कितने बेटे मर जाते हैं?
8।
किसको पता है? बेटा मर जाता है फिर क्या करता है ब्राह्मण? उग्रसेन महाराज के पास जाता है कि महाराज उग्रसेन, आपके राज्य में देखो मेरे पुत्र की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पुण्यवान हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया, और इस बच्चे ने भी क्या पाप किया, इसकी मृत्यु क्यों हुई? इसका मतलब है आपने कोई गलती की, इसकी वजह से मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। तो ब्रह्म शाप, ब्रह्म क्रोध तो राजा को भी अच्छा नहीं लगता है। तो उस समय अर्जुन मांगते, तो अर्जुन ने आश्वासन दिया उस ब्राह्मण को कि मैं तुम्हारे बच्चे की रक्षा करता हूँ, तुम चिंता नहीं करो, अब अगली बार तुम्हारा बच्चा होगा तो मुझे बताना। तो उस समय अर्जुन ने फिर अपने एक तीरों से एक आवरण बना लिया, कवच जैसे बना लिया एक आवरण। और फिर भी जैसे ही ब्राह्मण की पत्नी ने जन्म दिया बच्चे को, बच्चा काया हो गई उसकी, तो इस समय और फिर वो ब्राह्मण कोसने लगा कि अर्जुन तुम्हारे क्या भीषुर वीरता की कोई ये सब बढ़ा चढ़ा के सब किया है। तो अर्जुन ने उस समय क्या किया था, अग्नि में प्रवेश करूंगा ऐसे वचन लिया था। फिर भगवान ने क्या किया, कृष्ण आए और अर्जुन को लेकर यमराज के पास भी गए, उन्होंने बोला गोतिल्ला पता नहीं कहा है क्या है। फिर वो महाविष्णु के पास गए, महाविष्णु ने कहा हाँ आप सब, आपका दर्शन करना था मुझे कृष्ण, इसलिए मैंने ये लीला की। तो वो बच्चे को ले गए वापस, परंतु दोष किसको ठहराया, दोषी किसको ठहराया गया था,
राजा
उग्रसेन को। तो इस प्रकार से वो तो उस काल की बात थी, आजकल तो क्या कह सकते हैं। वैसे बताया जाता है कि राजा को प्रजा का एक छठाई भाग पाप और पुण्य मिल जाता है। तो यदि प्रजा बहुत पापी हो तो पापी लोगों का वो एक छठा पाप जो उनके सर पे आता है, तो कल्पना कर सकते हैं कि कितना भारी बोझ राजा को सहन करना पड़ता है, और पुण्य भी मिल जाता है। तो कलयुग में ज़्यादा कोई पुण्यवान लोग नहीं होते, ज़्यादातर पापी लोग होते हैं। तो ये सब जानते हैं तो कोई चुनाव में खड़ा नहीं होता नहीं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कितनी जिम्मेदारी है राजा की, कि वो हर एक व्यक्ति को अपने अपने वृत्ति के अनुसार, उसकी मानसिकता के अनुसार, उसकी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार उनको विविध प्रकार के कार्यों में लगाए, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार। वर्णाश्रम धर्म में क्या है कि अपने आध्यात्मिक और सामाजिक स्थिति, ये जो सब वर्ग है, तो जिसकी जैसी वृत्ति वैसे उसको उस कार्य में लगना चाहिए। जिसकी वृत्ति ब्राह्मण की है उसे ब्राह्मणों के कार्य में लगने चाहिए। लेकिन आजकल सब मिलजुल गया, सब हर एक अपने एक दूसरे के कार्य करते, अपने कार्य नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं इसके विशेष पे, कौन सा श्लोक, बताओ ब्रजेश कृष्ण प्रभु, बोलो। अठारहवें अध्याय खोल लो भगवद गीता, ऐसे कर्मण में भी रहता है के आगे
सिद्धिम विन्दति मानवा, सिद्धिम विन्दति मानवा,
हाँ ओके।
वैश्वे कर्मण्य भिरत संसिद्धि लब्धे नर स्वकर्म निरत सिद्धि यथा विन्दन्ति तश्रुणि।
तो अभी अर्थ पढ़ो उसका अनुवाद।
अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्धि हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है।
वैश्वे कर्मण्य अभिरत संसिद्धि लभते नर, तो संसिद्धि लभते नर, नर मतलब मनुष्य, लभते मतलब प्राप्त करना, संसिद्धि मतलब परिपूर्णता परफेक्शन। तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः। तो हरेक व्यक्ति अपने अपने गुणों के अनुसार, वृत्तियों के अनुसार जब कार्यों में लग जाता है, यही वर्णाश्रम धर्म है भगवान की संतुष्टि के लिए। तो वैसे हर एक को कार्य में लगना चाहिए, और राजा का कर्तव्य है कि हर एक व्यक्ति को इस प्रकार से कार्यों में लगाना। और पृथ्वी महाराज इसमें बहुत ही निपुण थे, व्यवहार कुशल, इसलिए वो इतने अच्छे राजा रहे। और जब व्यक्ति अपने वृत्ति के अनुसार कोई कार्य करता है तो फिर वो सुखी रहता है। जैसे एक व्यक्ति को किसी एक प्रकार के कार्य करने की वृत्ति है, आप उसको दूसरे प्रकार के कार्य में लगा दें, वो सुखी नहीं होगा ना। जैसे किसी को समझ लो बाहर के कार्य बहुत खेती करना बहुत पसंद है, उसको बहुत अच्छा लगता है, उसकी वृत्ति है, उसको आनंद मिलता है उस कार्य में, उसको आप जब बता के बोले कि आप कोई दूसरा ही कार्य कर लो बैठ के अंदर, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो सुखी नहीं होगा, थोड़े समय तक करेगा लेकिन उसके बाद नहीं कर पाएगा। हम कृष्ण के लिए सब कुछ करते हैं और करने के लिए तैयार हैं वो अलग बात है, परंतु एक संपूर्ण समाज की दृष्टि से देखा जाए तो हर एक व्यक्ति को इस प्रकार से अपने अपने वृत्ति के अनुसार कर्मों में लगना चाहिए, और फिर जब ये कृष्ण भक्ति से जोड़ा जाता है ये, तो फिर समसिद्धिम लभते नरः, तो ये बात है। तो पृथ्वी महाराज इस तरह से अपनी प्रजा का पालन करते थे, प्रजा की रक्षा करते थे। ठीक है, तो अभी इष्ट गोष्ठी थोड़ा करते हैं, और मुख्य विषय जो चर्चा करनी थी मुझे आज ये थी, ये है कि आप भी सब आपस में चर्चा करते आए हैं कि क्या हमें मंदिर के स्थान में कोई परिवर्तन करना चाहिए या नहीं चाहिए, मंदिर वहाँ करना चाहिए या मंदिर यहीं से बढ़ाना चाहिए, कि कैसे क्या करना चाहिए। तो अभी इसके बारे में थोड़ा विचार विमर्श हम करेंगे, हाँ, चर्चा करेंगे।